ब्लड शॉट एक अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है। फर्स्ट सीन में एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिन रे होता है। इसे हाथ में गन पकड़े हुए फाइटिंग करते हुए दिखाया जाता है और वो सब पर फायरिंग करके सबको मार रहा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक टेररिस्ट गन पॉइंट पर एक आदमी को लिए बैठा होता है। वो रे को देखकर कहता है कि अपनी गन को नीचे फेंक दो। उसके बाद रे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो हेलीकॉप्टर की डिमांड करता है। इस पर रे कहता है अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए तो मुझे फोन करने दो। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तो मौका पाकर रे इस पर फायरिंग करके इसे मार देता है और वो आदमी जो गन पॉइंट पर था बच जाता है। नेक्स्ट सीन एवियंजो एयरबेस से शुरू होता है। बहुत से सोल्जर्स एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे होते हैं, जहां मैरिन रे ऊंची आवाज में बोलता है कोई भी मिशन बहुत मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी बहुत अजीम होती है, और सब ड्यूटी फर्स्ट की आवाज लगाते हैं। इसी तरह रे पास खड़ी अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। ये एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है और ये अपनी वाइफ के साथ इटली में मुंबासा में चला जाता है जहाँ वो अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। लेकिन अनलकीली वहाँ इनको किडनैप कर लिया जाता है मार्टिन एक्स की तरफ से। एक्चुअली मार्टिन एक्स मुंबासा के हॉस्टेज ऑपरेशन के बारे में मालूमात इकट्ठी करना चाहता है और वो इससे बहुत कुछ पूछता है। लेकिन रे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। इसके बाद रे अपनी वाइफ को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किडनैपर कहता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और इसकी वाइफ का मर्डर कर देता है। रे बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे करूंगा और तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। इस पर वो किडनैपर रे को भी मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में रे ऐसी जगह पर होता है जहाँ इसको प्रॉपरली वायर्स के साथ अटैच किया गया होता है। जैसे ही इसे होश आता है तो वो वायर्स को उतार कर जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान एक लड़की कहती आती है और वो कहती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर एक नया किरदार डॉक्टर हार्टिंग सामने आता है, जो कि रे को वेलकम टू राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी कहता है और बताता है कि मैं डॉक्टर हार्टिंग हूँ और कहता है कि तुम्हारा जाग जाना एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। उसके बाद वो रे को बताता है कि US मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है और तुम मर गए थे। एक्चुअली डॉक्टर हार्टिंग इसको सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लाता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको अपने हथियार के तौर पर बना लेता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है तुम पहले हो जिसको हमने कामयाबी से वापस लेकर आए हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये हुआ है। तुम पहले हो जिसको सेकंड चांस मिला है। डॉक्टर हार्डिंग इस आदमी को बताता है कि हम US मिलिट्री के लिए एक कीमती एसेट बिल्ड कर रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोल्जर्स को तेज और ज्यादा ताकतवर बना देंगे। फिर वो डॉक्टर हार्डिंग एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे ही वो रे के हाथ पर जख्म लगाता है तो इसका जख्म बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। एक्चुअली ये बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो कि बहुत तेजी से रिएक्ट कर किया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग इसे बताता है कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत से डैमेज इश्यूज को फौरन ठीक कर लिया जाता है। इसके बाद कैटी कहती है कि तुम कौन हो, ये तुम नहीं जान सकोगे क्योंकि तुम्हें क्लासिफाई कर लिया गया है। और डॉक्टर हार्डिंग कहता है वो तुम्हारा मासी था लेकिन ये तुम्हारा फ्यूचर है। फिर डॉक्टर हार्डिंग अपने बारे में बताता है कि मैं टेनिस प्लेयर था और चैंपियन था और 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया था और मेरी बाजू को काट दिया गया। उसके बाद फिर वो अपनी बाजू रे को दिखाता है जो कि एक नई बाजू एक मैकेनिकल वे से लगा दी गई होती है और बहुत ताकतवर होती है। फिर इस तरह वो रे को ये भी बताता है कि अगर वो बहुत से सोल्जर्स अपनी बाजू खो देंगे तो हम उनके साथ एक नई बाजू लगा देंगे जो कि और ज्यादा ताकतवर होगी। इसके बाद वो अपने मुख्तलिफ पेशेंट से इसको मिलवाता है जिसमें जिमी भी होता है और बहुत सारे दूसरे भी पेशेंट्स होते हैं। इनमें से वो बताता है कि ये और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं क्योंकि जिमी ने अपनी टांगें खो दी थी, उनको आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई हैं, जबकि जो दूसरा इसका पार्टनर होता है वो अपनी आंखें खो देता है जबकि वो कैमरास उसके ऊपर एडजस्ट कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इसका बिल्कुल जो एफिलेशन होती है डायरेक्टली ऑप्टिक नर्व से मिल जाती है और वो हर चीज को देख सकता है। नेक्स्ट सीन में जब रे सोकर उठता है तो इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। वो पिलर को पंच करके बहुत ज्यादा पंच करता है लेकिन इसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि पिलर टूट जाता है और वो हैवीएस्ट डंबल भी आसानी से उठा लेता है। फिर वो कैटी से मिलता है जो कि स्विमिंग कर रही होती है और कहता है कि ये नाइटमेयर है कि मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है। फिर कैटी इसको ड्रिंक देती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो इसके माइंड में फ्लैशबैक चलने लगता है और इसको इसकी वाइफ का मर्डर और इसकी वाइफ की सारी मेमोरीज आना शुरू हो जाती है। वो गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार देता है और फिर जल्दी से बाहर निकल जाता है अपना बैग लेकर। डॉक्टर हार्टिंग कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये कहाँ जा रहा है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल को जल्दी से ओपन कर दो। फिर वो रे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। रे कहता है तुम मुझसे किस तरह बात कर सकते हो। तो डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि तुम्हारे अंदर बिलियन वायरलेस प्रोसेसेस चल रहे हैं और ये ब्रेन में तुम्हारे साथ ये वायरस जुड़ी हुई हैं। तुम्हें अब वापस लौट कर आना है। हम सिर्फ वो लोग हैं जिन्हें तुम जानते हो। इस पर रे कहता है कि मेरी बीवी थी जिसका मर्डर हो गया था, मुझे इसका कन्फर्म करना है। उसके बाद डॉक्टर हार्टिंग पूछता है कि किसने किया है मर्डर। इसके बाद वो बताता है मार्टिन एक्स का नाम लिया जाता है। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि तुम्हें वापस आने का कहता हूँ क्योंकि तुम एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट हो। लेकिन रे इसकी बात नहीं सुनता और पायलट की सीट पर बैठ के जहाज पे निकल जाता है। अब जिस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया होता है वो कुआलालंपुर की होती है जो बुडापेस्ट होती है। अब एक जगह दिखाई जाती है जहाँ मार्टिन एक्स को गाड़ियों में ले जाया जा रहा होता है। जब वो टनल से गुजरते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और अचानक से एक ट्रक आकर वहां टकरा जाता है। अभी मार्टिन एक्स गाड़ी में बैठा होता है और पास बैठे दो आदमियों को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो। इसी तरह वहां रे पहुंच जाता है और बहुत सारे लोगों से फायरिंग शुरू कर देता है। मार्टिन चिल्लाता है कि मुझे इस कार से बाहर निकालो। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन इस पर इस किसी चीज का कोई असर नहीं होता क्योंकि इसे सुपर ह्यूमन पावर बना दिया गया होता है। इसका सारा जमीन पर गिरा हुआ खून इसके अंदर चला जाता है और जल्द ही इसकी रिकवरी हो जाती है। दूसरी तरफ आम बॉडीगार्ड्स और सब उस पे बॉम्ब से और गन से अटैक करते हैं लेकिन रे का कुछ नहीं बिगड़ता। आखिर वो मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और इसका मर्डर कर देता है। अगले सीन में चकोल एयरफील्ड को दिखाया जाता है जहां रे अपनी जीप में वहां जाकर पहुंच जाता है। वहां साइंटिस्ट के पेशेंट जिमी, मार्कस एंड केटी उसका वेट कर रहे होते हैं और उसको दोबारा लेबोरेटरी में वापस लाया जाता है। वो केटी को बताता है जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया था मैंने इसे मार दिया है, मैंने अपना काम कर लिया है और अब सब रे को लेकर ही प्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट में वापस ले आते हैं। लेबोरेटरी में रे के ऊपर फिर काम किया जाता है और इसकी मेमोरी को वाइप आउट भी किया जाता है। हकीकत में डॉक्टर हार्टिंग इसकी वाइफ की डेथ के मुताबिक फॉल्स मेमोरीज को डाल रहा होता है जो कि बहुत ही गलत मेमोरीज होती हैं जो इसकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बना दी जाती है क्योंकि राइजिंग स्पिरिट में राइवर्स को खत्म करने के लिए रे की मौजूदा मेमोरीज को खत्म कर दिया जाता है और उसको दोबारा रिप्रोग्राम किया जाता है। अब डॉक्टर हार्टिंग कैटी से बात करता है और वो कहती है कि हम इसकी मेमोरी को वाइप आउट करने जा रहे हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि जो हमने किया है वो एक मकसद के तहत था, जिससे पता चलता है कि हार्टिंग रे को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा होता है एक वेपन की। अब हार्टिंग का अगला टारगेट निक बैरिस होता है जिसको रे के जरिए मरवाना होता है। जबकि सीन में केटी कहती है कि रे एक सोल्जर है लेकिन हार्टिंग कहता है ये एक डेड सोल्जर है जो ये डिजर्व करता है। अब रे की वाइफ गिना का किलर उसके माइंड में उसका नाम निक बैरिस को सेट कर दिया जाता है और उसका नेक्स्ट टारगेट बैरिस होता है। अब दोबारा रे गाड़ी लेकर निकल जाता है और डॉक्टर हार्टिंग अपनी प्लानिंग के मुताबिक दोबारा अपने वर्ड्स को रिपीट करता है, जैसा कि तुम कहां जा रहे हो, हम ही लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं। फिर पूछा जाता है तुम किसके पीछे जा रहे हो, लेकिन इस बार बताया जाता है कि निक बैरिस के पीछे जा रहा हूं। अब रे एयरक्राफ्ट के जरिए ईस्ट सुसेक्स इंग्लैंड में पहुंच जाता है जहां बैरिस होता है। बैरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इसी दौरान इसका प्रोग्रामर विल्कन्स एक केस लेकर आता है जिसमें ईएमपी बॉम्ब होता है। इस पर डॉक्टर हार्डिंग अपने कैमरा के थ्रू सब कुछ देख रहा होता है। ये सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में रे बैरिस के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। इस पर बैरिस कहता है ये झूठ है जो तुम नहीं समझ रहे हो। रे जाने के लिए रे उसका मर्डर कर देता है और फिर बाहर चला जाता है और जाकर बेहोश हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है तो उसको विल्कन्स जो इसका प्रोग्रामर था बैरिस का वो उसको अंदर ले जाता है। डॉक्टर हार्डिंग की लैब में सिग्नल लॉस्ट का साइन आता है। जब रे को दोबारा होश आता है तो वो विल्कन्स पर अटैक करने लगता है तो विल्कन्स कहता है कि मैं फ्रेंडली हूँ। अभी रे ये सोच रहा होता है कि हमेशा इसकी वाइफ का मर्डर हमेशा डिफरेंट पर्सन ही क्यों बन जाता है। विल्कन्स इस पर हैरानगी दिखाता है। रे इसको बताता है कि मेरी बीवी का नाम गिना है। फिर अपने हाथ पर कट लगा लेता है और एक ग्लास में अपना ब्लड निकाल कर विल्कन्स को दे देता है। विल्कन्स इस पर कहता है कि ये अमेजिंग है और कहता है कि तुम इंटायर प्रोग्रामेबल सिस्टम के तहत चल रहे हो और ये भी बताता है कि राइजिंग स्पिरिट ने तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज डाल दी है और तुम्हें एक किलिंग मशीन बना दिया है। इस पर ये कहता है कि ये प्रोग्राम ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा और फिर ये भी डिस्कवर कर लेता है कि इसकी वाइफ जिंदा है। नेक्स्ट सीन लंदन इंग्लैंड में दिखाया जाता है जहां रे अपनी वाइफ को तलाश करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है और इसे कहता है कि घर आ जाओ। इस पर गिना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, ये तो सब कुछ सेटल हो गया था, अब मेरी एक फैमिली है। रे पूछता है कि आखिरी बार हम कब मिले थे, जिस पर इसकी वाइफ बताती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत हैरान हो जाता है। फिर रे वहाँ से चला जाता है और बहुत रोता है। वो गाड़ी में जा रहा होता है, जिमी और इसका साथी अपनी गाड़ी लेकर रे की गाड़ी को बहुत बुरे तरीके से हिट कर देते हैं और इस तरह इस पर फायरिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। रे को जैसे ही बुलेट लगती है तो इसका वो जिस्म का हिस्सा ब्लू हो जाता है और वहाँ से रे एक चिप निकालता है और भाग जाता है। जिमी अपने साथी के साथ इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बुलेट्स को हवा में फायर करता है तो वो कैमरास बन जाती हैं, जिससे रे की लोकेशन का पता चल जाता है। रे पर फायरिंग की जाती है लेकिन रे एक पुलिस कार से गन्स को छीनकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। अब जिमी के साथ इसकी फाइट चल रही होती है और ये पब्लिक रोड पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक ट्रक आता है जो कि इन दोनों के ऊपर से गुजर जाता है, जिसमें से रे को कुछ नहीं होता और इसकी रिकवरी हो जाती है, जबकि जिमी की टांगें अलग हो जाती हैं जो कि आर्टिफिशियल होती हैं। थोड़ी देर में जिमी इसकी बैग में एक डिवाइस को स्टैप कर देता है, जिससे दोबारा वो रे बेहोश हो जाता है। अब कैटी रे के लिए थोड़ा फ्रेंडली बन जाती है, जबकि लैग में जब डॉक्टर हार्टिंग इसको कुछ कमांड्स देता है विल्कन्स के बारे में तो वो नहीं मानती। इस पर वो इसकी ब्रीथिंग सिस्टम को रोक देता है, जिससे कैटी की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद वो मान जाती है और विल्कन्स को ढूंढने निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में कैटी सोहो लंदन में होती है और वहां पहुंच जाती है जहां विल्कन्स होता है। वो स्मोकिंग के लिए विल्कन्स से लाइटर मांगती है और जैसे ही स्मोकिंग स्टार्ट करती है तो उसका स्मोक विल्कन्स के अंदर जाता है और वो बेहोश हो जाता है और इस तरह इसके साथियों से इसके बॉडीगार्ड से लड़ाई कर उनको मार देती है। अब रे को जब होश आता है तो डॉक्टर مارٹن کے پاس ہوتا ہے. رے کہتا ہے کہ تم نے مجھے استعمال کیا اور مجھ سے قتل کروائے, تم نے میری بیوی کا بھی مرڈر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر ہارٹنگ کہتا ہے کہ ریونج ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری طرح آدمیوں کو ایکسیپشنل بنا دیتی ہے. رے کہتا ہے کہ تم جیسے لوگ میرے جیسے لوگوں کو صرف توڑ کر رکھ دیتے ہیں, لیکن تم ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے اور ایسا ہونا ہوگا بھی نہیں. اچانک سے ڈاکٹر ہارٹنگ اس کے پہلے والی کنڈیشن میں لا کر سینس لیس کر دیتا ہے. ایک طرف ڈاکٹر ہارٹنگ رے پر اپنی پروگرامنگ کر رہا ہوتا ہے, جبکہ دوسری طرف ویگنز اپنی پروگرامنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. کیٹی رے کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور رے کو بچانے کی بھی, تاکہ وہ رے کو اب اس کی زندگی کو بچا سکے اور اس کو صحیح جگہ پر لا سکے. اب ڈاکٹر ہارٹنگ کیٹی کی پلاننگ جاننے کے بعد اس کے بریتھنگ سسٹم کو دوبارہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایکسس ڈینائی ہو جاتی ہے. ایک طرف جمی بھی اپنی فلی آرمڈ ہو جاتا ہے اور رے سے فائٹ کرنے کے لیے نکل آتا ہے. اب رے کو ویگنز کنٹرول کرتا ہے اور رے کہتا ہے کہ میں اب اپنا کام کرنے جا رہا ہوں, اور وہاں پہنچتا ہے جب جمی اپنے دوست اپنے ساتھی مارکس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے فائٹ کرتا ہے. دوسرا جمی کا ساتھی بھی اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. اب جمی اور مارکس مل کر اسے فائٹ کرتے ہیں, لیکن رے سپر ہیومن پاور ہوتے ہوئے جمی کو بہت طریقے سے بہت برے طریقے سے ہرٹ کر دیتا ہے اور ایک جمی کا پاور فل ہینڈ کو اس سے الگ کر دیتا ہے. اور جہاں ڈاکٹر ہارٹنگ بھاگ رہا ہوتا ہے, اس کا وہ ہینڈ اس کی گاڑی میں جا کر لگتا ہے, جس سے اس کی گاڑی رک جاتی ہے. اب رے ڈاکٹر ہارٹنگ کی طرف بڑھتا ہے اور ڈاکٹر چلاتا ہے کہ میں صرف اکیلا تھا جس نے تمہیں ریبلڈ کیا, اگر میں نہیں ہوں گا تو تم بھی سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن رے مسلسل غصے سے ڈاکٹر کی طرف بڑھتا جاتا ہے. ڈاکٹر ہارٹنگ اپنے ویپنز کو نکالتا ہے اور رے پر اٹیک کر دیتا ہے, لیکن وہ بلٹ رے اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہے. کیٹی دوسری طرف ویگنز کے ساتھ برابر رے کی باڈی اور مائنڈ کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتی ہے. رے پر اب بہت سی چینجنگز آتی رہتی ہیں اور رے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بام کو زمین پر گرا دیتا ہے, جس پر بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر ہارٹنگ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نیکسٹ سین میں جب رے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں, تو ویگنز اسے ریلیکس بولتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب تم کیسا فیل کر رہے ہو. اس کے بعد کیٹی باہر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ رے ویگنز کو تھینک یو بول کر کیٹی سے باہر ملنے چلا جاتا ہے.